मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 17 नवंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने इस एपिसोड में कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल मैंने आप सबसे एक अनुरोध किया था कि आप पाठक के रूप में जो मनोवैज्ञानिक यात्रा करते हैं प्लीज उसका एक जायजा लें, और मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ प्रिय श्रोताओं ने इसके बारे में अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर किए हैं। आइए अब मैं इसी बात को आपके सामने एक दूसरे अंदाज में पेश करता हूं। फ्रेंड्स, जब आप आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में सुनते, बात करते और पढ़ते हैं, तो आपको इसके बड़े अलग अलग रूप पढ़ने सुनने को मिलते होंगे। ज्यादातर लोग तो इसे सीधे सीधे धर्म से जोड़ करके देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन के एक चरण के बाद हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। लेकिन जो यथार्थवादी किस्म के लोग हैं, जो तर्कवादी हैं, जो जीवन की सच्चाइयों से हमेशा रूबरू होते हैं, उनके वाक्यों में आपको एक बात मिलेगी, और वो बात ये, चाहे वो साफ तौर पर जाहिर हो रही हो या प्रत्यक्ष रूप से, कि जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वही इनफैक्ट आध्यात्मिकता है। आप इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि रचनात्मक जीवन जीना ही मूलतः आध्यात्मिक जीवन जीना होता है। रचनात्मक, क्रिएटिव, यानी कि आप कुछ रच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और जो रच रहे हैं वो और जो बना रहे हैं वो ये नहीं कि जो पहले से ही है आप उसको ही ज्यों का त्यों कार्बन कॉपी कर रहे हैं, नहीं, उसमें आप कुछ नया जोड़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया आज यहां तक पहुंची है, वो इसी तरीके से पहुंची है कि लोग आते चले गए, जो कुछ था नया कुछ ढूंढते चले गए या उसमें कुछ नया जोड़ते चले गए, और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। तो जब आप कुछ नया करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह के संतोष का भाव पैदा होता है। आप अंदर से बिल्कुल सिहर उठते हैं, मन एक अलग किस्म के आनंद से भर उठता है, और उसे ही कहते हैं आध्यात्मिकता के क्षण। इसका मतलब यह हुआ कि जो रचनात्मकता है वह हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए। और कल मैंने जो बात कही थी, शायद आपने उसका थोड़ा अनुभव जरूर किया होगा, कि जब आप पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो जो आपकी यात्रा होती है वह कुछ रचने वाली यात्रा होती है। आप लेखक के ही गुलाम नहीं होते हैं। लेखक ने मान लीजिए कि किसी एक प्रेम कथा का वर्णन किया है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें जो वर्णन किया गया है वही ज्यों का त्यों आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं, आपके दिमाग में जो आ रहा है वह आपकी अपनी प्रेम कथा आ रही है, आपका अपना गांव, आपके अपने दूर दराज के लोग, ये सब आ रहे हैं, तो आप उन्हें रच रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अध्ययन है, जो पुस्तकों को पढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं हमें रचनात्मकता की ओर ले जाती है, हमें रचनात्मक बनाती है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक जीवन के निकट पहुंचाती है। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि केवल धार्मिक किताबें पढ़ना ही आध्यात्मिक होना है, यानी यह बहुत ही संकीर्ण नजरिया मुझे लगता है, या बहुत ही संकीर्ण परिभाषा आप इसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसी बात को दूसरे रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहां हमारी जो कॉलोनी है उसमें एक शॉप थी, अब तो नहीं है। उस शॉप में एक नौजवान बैठता था, नौजवान, उम्र हार्डली 30 ईयर्स की होगी, विवाहित थे वो और अच्छे स्मार्ट थे। फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो जाना चाहे तो उनको आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जाता, एक बार तो उनको मौका दिया ही जाता कि ठीक है आओ ऑडिशन वगैरह तो ले ही लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति और बहुत ही प्यारे और भले व्यक्ति, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब जो उनके साथ जो मूल समस्या थी, और आप देखिए कि मैंने कहा कि दुकान थी, मैं थी की भाषा में बात कर रहा हूं, और ये दौर कुल 10 साल का ही है, जम्बा दौर नहीं है। मान लीजिए कि मैं उनके यहां कोई सामान लेने गया, मैं एक सच्ची घटना ही बता रहा हूं, मैं सामान लेने गया और मैंने 2 सामान लिए, एक उसमें से 10 रुपए का था, दूसरा सामान 5 रुपए का था। मैंने उनको 20 रुपए का नोट दिया, राइट? उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? कैलकुलेटर निकाला, पहले तो 10 और 5 जोड़ करके मुझे बताया, पहले बताया कि भाई 15 रुपए हुए, तो जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको 20 का नोट दे दिया। जब मैंने उनको 20 का नोट दिया तो फिर उन्होंने कैलकुलेटर संभाला और बकायदे उसमें 20 टाइप किया, फिर माइनस टाइप करके उसमें 15 टाइप किया और इसके बाद जो बचा वो आया 5 रुपए और मुझे 5 रुपए लौटा दिए। दोस्तों ये हालत है, दिमाग की हालत आप सोचिए, मतलब उस दिमाग में, उस मस्तिष्क में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो 10 और 5 को जोड़ सके और 20 में से 15 को घटा सके। इसे आप क्या कहेंगे, ये रचनात्मकता का कितना बड़ा हनन है आप इमेजिन नहीं कर सकते। कल्पना करके देखिए, जब मैंने यह घटना अपने सामने घटित होते हुए देखी तो मैं अंदर से बुरी तरह से घबरा गया कि यह क्या हो रहा है। और ये जो क्या हो रहा है ये केवल उसी युवा के संदर्भ में नहीं थी, ये बात उसी के संदर्भ में नहीं है। आप अभी किसी भी दुकान में चले जाइए, कहीं भी ऐसी जगहों पर चले जाइए, अक्सर आपको उनकी उंगलियां कैलकुलेटर पर नाचती हुई दिखाई देने लगेंगी। वो अपनी तरफ से जोड़ने की क्षमता नहीं रखते। मुझे अपना भी समय याद आता है, मैंने तो दुकानदारी की है और कैसे हम लोग मुंह जबानी फटाफट बता देते थे कि 1 किलो इतने का है तो 50 ग्राम कितने का होगा, 1 पाव कितने का होगा, फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर देते थे। आप मुझे अभी दे दीजिए 20 तरह के अंक दे दीजिए, मैं फटाफट फटाफट जोड़ करके आपको बता दूंगा कि इतने होते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपनी नहीं, हमारे समय के हर लोग की यही हालत थी और आज के समय के हर युवा की ये हालत है। दो बिल्कुल अलग अलग वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं और इनका जो काल है, जो समय है, जो टाइमिंग है, वो कोई बहुत ज्यादा फर्क उस वाला नहीं है, उसमें बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। अब हम सबको यहां बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ये तो मैंने कैलकुलेशन के बारे में ही आपसे बात बताई है, अब आप इसको और थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, और थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए। आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप YouTube पर प्रोग्राम देखते हैं, आप टीवी चैनल्स पर आप पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम्स देख रहे हैं, किताबें क्या कर रही हैं आपको, किताबें जो दृश्य चित्र बता रही हैं उसमें आपको अपनी तरफ से सोचने का मौका दे रही हैं, लेकिन आपका जो स्मार्टफोन है वो चित्र के साथ आपके दिमाग को परोस रहा है, जो आपके टीवी चैनल्स हैं वे भी चित्र के साथ आपको सारी चीजें परोस रहे हैं। तो जब चित्र के साथ सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं तो आपके अपनी जो चीजें हैं वो गायब हो जा रही हैं, आप अपनी तरफ से कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं है, कुछ बनाने की ही स्थिति में नहीं है, कुछ भी रचने की ही स्थिति में नहीं है, यानी कि रचनात्मकता पूरी तरह से स्थगित है, गायब है, शून्य है। क्या आपको लगता है कि यह कम बड़ा संकट है? ये बहुत बड़ा संकट है और मुझे लगता है कि हमारी जो किताबें हैं वो हमें इस भयानक किस्म के संकट से उबारने का बहुत बड़ा काम करती हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।